आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। खो खो एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसकी जड़ें भारत के हर कोने तक फैली हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान बना रहा है। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ इनॉग्रल 2025 खो खो वर्ल्ड कप इसी दिशा में एक अहम कदम रहा। खो खो ऑस्ट्रेलिया, जो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन का सदस्य है, इस खेल को ऑस्ट्रेलिया के विविध समुदायों तक पहुंचाने और इसे मजबूत नींव देने के लिए काम कर रहा है। इसी सिलसिले में SBS हिंदी ने खो खो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों से बात की, जो इस खेल में कोच, तकनीकी टीम और मीडिया की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ खुद खिलाड़ी भी रहे हैं। सबसे पहले हमारी बात हुई ओजस कुलकर्णी से, जो खो खो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल कमेटी में कोचिंग एंड मीडिया टीम के सदस्य हैं। हमने उनसे पूछा, ऑस्ट्रेलिया जैसे मल्टीकल्चरल देश में अलग अलग पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों के साथ काम करना कितना चुनौतीपूर्ण और कितना रोमांचक होता है।
ये इट्स नॉट अ चैलेंज, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स को का कल्चर है, तो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये सब सबके लिए बहुत इजी अडेप्ट करने के लिए गेम है। तो हमें, जब हमने प्रयास किया, शुरुआत की वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने के लिए, एक्चुअली हमें बहुत ही इजी गया कि जो भी जो प्लेयर्स थे, मेंस हो या वीमेंस हो, वो कुछ ना कुछ गेम खेलते थे पहले, वो फुटी हो या एथलेटिक्स में रनिंग करते हो या मैराथन दौड़ते हो, तो उनको हमें बस स्किल्स बेसिक सिखाने थे। और इस वजह से सभी कम्युनिटी के लिए, ऑस्ट्रेलिया में जो भी है उनको सबको सिखाने के लिए हमें ये बहुत ही बड़ा अवसर है और बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटी है।
ऐसे टाई अप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को कैसे मजबूती मिलती है और क्या खो खो को एक दिन क्रिकेट या फुटी जैसी लोकप्रियता मिल सकती है?
मुझे लगता है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो स्पोर्टिंग रिलेशनशिप है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हमें पता है कि ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन गेम्स भी आज भारत में खेले जा रहे हैं, जैसे कि फुटी हो, वैसे ही ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स भी ऑस्ट्रेलिया में खेले जाना और उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलना, और आई थिंक इट्स अ रियली गुड स्टोरी इट्सेल्फ कि ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी हो या भारतीय कम्युनिटी हो, कितना एक दूसरे के करीब है, और आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी।
एज अ कोच, क्या आप ये बता सकते हैं कि खिलाड़ियों को एक्टिव रखने के अलावा खो खो उनकी निजी जिंदगी पर कैसा असर डालता है?
डेफिनेटली, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज है कि घर से बाहर निकलना, कम्युनिटी के साथ खेलना, आई थिंक दैट इट्सेल्फ इज अ गुड स्टेप फर्स्ट, एंड देन उसके साथ ऑफकोर्स खो खो में बहुत भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो नेचुरली जो हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं हमारे ट्रेनिंग्स में, उससे डेफिनेटली फिजिकली तो बहुत फिटनेस होता है, और फिजिकल और मेंटल फिटनेस आर लिंक टू इच अदर, तो डेफिनेटली मेंटल फिटनेस पे भी उसका बहुत अच्छा असर होता है। और बाकी देखा जाए तो द वे वी रन हमारे ट्रेनिंग्स हो, उसमें सब एज ग्रुप के प्लेयर्स आते हैं, तो एक वो अच्छा अच्छा वातावरण बनता है जिसमें बहुत अच्छा सोशल कोहेजन होता है, एक दूसरों के साथ बात होती है। आई थिंक सो उसके हिसाब से मेंटल यू नो सो हेल्थ के ऊपर भी एक अच्छा असर है उसका।
भारत के अलावा और किन देशों की टीमें खो खो में तेजी से आगे बढ़ रही हैं?
मुझे लगता है बहुत सारी टीम्स जो है फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दे वर रियली स्ट्रॉन्ग, बहुत सालों से वो खो खो खेल रहे हैं, और हमने देखा तो उनकी उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी। हमारा भी एक मैच था केनिया के अगेंस्ट, तो हमारा वो बहुत टफ कंपटीशन हुआ था उनके साथ, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खो खो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और definitely love to see them coming again, you know, getting forward.
इसके बाद हमारी बात हुई सुबोध बापट से, जो खो खो ऑस्ट्रेलिया की टेक्निकल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि पहले खिलाड़ी और अब एक तकनीकी भूमिका निभाते हुए इन दोनों अनुभवों में क्या अंतर महसूस होता है?
जब आप प्लेयर होते हो तो आप पूरी जी जान लगा के, पैशन लगा के खेलते हो, राइट? जब आपका ध्यान पूरा सिर्फ वो गेम पे होता है, गेम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैच, बिकॉज कोई बंदा अगर कुछ खेल रहा है तो वो जीतने के लिए खेलता है, राइट? तो वो जुनून अलग होता है जब आप खेलते हो, बट आप जब सपोर्टिंग साइड का हिस्सा होते हो तब जैसे आप, मैं टेक्निकल का हिस्सा हूँ, राइट? मेरा काम यही होता, कोशिश यही होती है कि अभी खो खो के लिए हम क्या कर सकते हैं, इतना डेवलप हो रहा है खो खो, मेबी फिटनेस हो या स्ट्रेटेजीज हो या कोई स्किल हो, वो कैसे बढ़ा है, हमारे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम वो कैसे सिखा है, उसका प्लानिंग कैसा हो, ये इसके ऊपर हम काम करते हैं। बिकॉज अभी कैसा है कि ऑस्ट्रेलिया में खो खो बहुत नया है, ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं और स्विमिंग करते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, बट हमें बाकी के लोगों को ये खेल में इंटरेस्ट लाना, तो टेक्निकल टीम क्या करती है, कैसे हम इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसके लिए हम कोशिश करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, स्किल है, हम इस पे लगा देते हैं पूरे प्लानिंग में।
आज के दौर में जब हर खेल नए फॉर्मेट्स और रूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब खो खो में भी वजीर और ड्रीम रन जैसे नियम लाए गए हैं। क्या इनसे खेल में रोमांच का स्तर बढ़ा है?
डेफिनेटली बदला है। आज के जमाने में सबको फास्ट पेस चाहिए, राइट? T20 हो गया क्रिकेट में, राइट? जो ऑथेंटिक खो खो है, जो क्ले पे खेला जाता है, मैं खुद वही खेला हूँ, राइट? तो मुझे खुद को भी ये नए फॉर्मेट में अडॉप्ट होने के लिए बहुत टाइम लगा। जैसे हम 9 लोगों का खेलता, अभी 7 का हो गया, अभी टाइम कम हो गया, टाइम आउट्स आ गए, तो बहुत अडॉप्ट होने में हमें भी टाइम लगा। बट आज के जमाने में अगर खेल को इंटरेस्ट करना है, बाकी के लोगों को भी अट्रैक्ट करना है, ये फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे आपका पूरा फ्लेक्सिबिलिटी, आपका टेम्परामेंट, आपकी स्ट्रेटेजीज, पूरे की परीक्षा इसमें लग जाती है। तो नया फॉर्मेट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। वजीर फॉर एग्जांपल, ये क्या बढ़िया फॉर्मेट है, राइट? यू हैव टू बी अलर्ट। आप जब खेल रहे हो ना, वजीर की वजह से आपको इतना अलर्टनेस रहना पड़ता है गेम में कि वजीर कहाँ भी जा सकता है, राइट? तो ये चेंजेस डेफिनेटली अच्छे हैं, जस्ट टू गेट मोर पीपल इंटरेस्टेड इन दिस गेम।
अंत में हमने बात की राजसुरा से, जो खो खो ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हैं। इस खेल को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पॉन्सरशिप या जागरूकता, किन पहलुओं पर सबसे ज्यादा काम करना जरूरी है, इसके बारे में उन्होंने बताया।
खो खो का और एक्सपांशन भारत के बाहर होने के लिए बहुत सारी इंटरनेशनल टूर्नामेंट चाहिए, सो ताकि प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सके और उनको एक्सपोजर मिल सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात रही ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं स्प्रेड करने की ऑस्ट्रेलिया में। हमने हमको कुछ बहुत सक्सेस भी मिला है, हमने पहला ग्राउंड एस्टेब्लिश किया है लिवरपूल में। तो जरूरत अभी तो स्पॉन्सरशिप की भी है, वो भी है, और ऑस्ट्रेलिया के रूल ऐसे है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती जब तक एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन 3 साल चल रही है, खो खो एसोसिएशन 3 साल चल रही हो और उसके 1000 एक्टिव मेंबर्स हो, तब तक गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर सकती। तो अभी तो हम सब प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से सब एक्टिविटीज कर रहे हैं हमारी, तो वी कैन प्रमोट खो खो इन ऑस्ट्रेलिया।
क्या भविष्य में खो खो 2036 ओलंपिक्स का हिस्सा बनते हुए दिखेगा? इस पर राजसुरा ने अपनी राय रखी।
अभी तो जैसे बोला कि खो खो की वर्ल्ड कप, पहली वर्ल्ड कप हो चुकी है, अभी दूसरी सेकंड वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर यूके में हो रही है, और खो खो की अभी एशियन ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हो चुकी है। अभी मार्च नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो गेम्स हो रहे हैं इंडिया में, तो देयर इज एक्सपेंशन हैपनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल पे। तो जैसे जैसे ऐसे टूर्नामेंट चलते रहेंगे और मोर एंड मोर कंट्री ज्वाइन कर सकेंगे और प्लेयर्स डेवलप कर सकेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये खो खो और भी बढ़ जाएगा सब कंट्रीज में और ओलंपिक में जुड़ा जाएगा 2036 में।
इस प्रस्तुति में व्यक्त किए गए विचार अतिथियों के व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो उनसे सहमत है और ना ही असहमत।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।